उत्तरपूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताजा अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे हम पूर्वोत्तर डायरी के पन्ने आपके लिए खोलते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न गतिविधियों से आपको रूबरू करवाते हैं। खेल, संस्कृति और तमाम पहलुओं पर हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट्स आपको सुनवाते हैं। तो आज भी इस अंक में बहुत कुछ खास है। मैं कमल कुमार प्रजापति आप सभी श्रोताओं का आज के इस अंक में स्वागत करता हूँ।
श्रोताओं, आज के पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न गतिविधियों से। तो आइए जानते हैं कि बीते हफ्ते पूर्वोत्तर राज्यों के क्या समाचार रहे। प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार।
देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र ने पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल में विकास और प्रगति का एक नया चरण देखा है। विकसित भारत का अमृतकाल विषय पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार द्वारा किए गए भारी निवेश ने पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया है। इसमें सड़कों, पुलों, संपर्क मार्गों और संचार नेटवर्क का व्यापक विस्तार शामिल है। उन्होंने ये भी बताया कि क्षेत्र में एम्स, आईआईएम, आईआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों की स्थापना की गई है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के कृषि अनुसंधान केंद्र और आधुनिक हवाई अड्डों का विकास भी हुआ है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का जिक्र करते हुए श्री सोनोवाल ने बताया कि देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में क्षेत्र में कुल 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर का समग्र विकास करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पूर्वोत्तर को दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक रणनीतिक केंद्र और भारत के आर्थिक विकास का इंजन मानते हैं। ये दृष्टिकोण प्रधानमंत्री के पूर्वोत्तर के प्रति विशेष स्नेह और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी 70 से अधिक बार पूर्वोत्तर का दौरा कर चुके हैं। श्री सोनोवाल ने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे हर पखवाड़े में कम से कम एक बार पूर्वोत्तर का दौरा करें, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके। इस संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण ने पूर्वोत्तर को विकास का प्रमुख इंजन बना दिया है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन प्रधानमंत्री मोदी के विशेष ध्यान, प्रेम और संकल्प का परिणाम है। पूर्वोत्तर में आए सकारात्मक बदलाव पर बोलते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि कभी यह क्षेत्र उग्रवाद, हिंसा और अशांति के लिए जाना जाता था, लेकिन अब हजारों उग्रवादी आत्मसमर्पण कर राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब अपस्पा कानून 74% क्षेत्रों से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों ने जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रगति यह सिद्ध करती है कि अच्छा प्रशासन, ईमानदार प्रयास और परिश्रम से देश को बदला जा सकता है। पिछले 11 वर्षों में जो प्रगति हुई है उसे हर नागरिक ने महसूस किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी सराहना हो रही है। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और अगले 5 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।
अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट डिड स्प्लेंडिड जॉब फॉर द कॉज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड बिकॉज ऑफ इनिशिएटिव पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ द कंट्री गॉट बेनिफिटेड देयर standard of living and also social security dignified living had been ensured in the last 11 years because of the effective policy and program adopted by BJP-led NDA government the growth of economy has ultimately proved that the good governance sincere effort devoted efforts and hardworking efforts have ultimately made the country powerful. And in the last 11 years, whatever achievement have been achieved so far, it has been realized by every citizen of the country and also recognized by the global society at large. Now India regarded to be the fastest growing economy in the world, and we could able to uplift our position from 11 to, during 2014, our position was at 11th in the global ranking. But now, because of the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and his heart to the people of India, and also his sympathy, support and his devoted effort ultimately benefited the whole country in such a manner. Now India, in the next 5 years' time, going to become the third largest economy in the world.
केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पूर्वोत्तर को प्राथमिकता देते हुए उसे मुख्य धारा के विकास के समकक्ष लाने के उद्देश्य से तेज गति से योजनाओं को लागू कर रही है। इस क्रम में मेघालय सरकार ने आने वाले 5 वर्षों में अपने वन क्षेत्र को 40,000 हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। पिछले 7 वर्षों में राज्य ने लगभग 22,000 हेक्टेयर में वन क्षेत्र को जोड़ा है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने बताया कि उनकी सरकार समुदाय आधारित संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित कर रही है और राज्य भर में शहरी स्वच्छता को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 7 वर्षों में राज्य में लगभग 2 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आने वाले 5 वर्षों में ये वन विस्तार लक्ष्य 40,000 हेक्टेयर तक ले जाना है। उन्होंने पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज PES योजना की सफलता का भी जिक्र किया, जिसके तहत 52,000 हेक्टेयर वन भूमि की रक्षा के लिए समुदायों को अब तक 42 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। अब इस योजना को ग्रीन मेघालय प्लस के रूप में अपग्रेड किया गया है, जिसके तहत अब समुदायों को प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपए तक सहायता मिल सकती है और इसका उद्देश्य 1,00,000 हेक्टेयर भूमि का संरक्षण है।
गवर्नमेंट ऑफ मेघालय हैज बीन वर्किंग टायरलेसली इन द लास्ट 7 years for preservation of the environment and overall increasing our forest cover, and also in terms of cleanliness and other aspects of the environment. Close to about 22,000 hectares of new forest cover has been grown in the last 5 years, where about close to 2 crore saplings have been planted by the different departments and different agencies of the government. In the next 5 years, we have a target of covering 40,000 more hectares of forest cover. At the same time, through the PES, which is a very, very innovative program, Payment for Ecosystem Services, where we actually give funds to the community who own the forest area to preserve and to protect the forest area. And through this program, about 42 crores has been distributed to the community, and close to about 52,000 hectares of forest cover has been stopped, we can say, has been protected and has not been destroyed.
प्रमुख मुख्य वन संरक्षक RS गिल ने मेघालय की समृद्ध पारंपरिक पर्यावरणीय जागरूकता की सराहना करते हुए कहा कि राज्य के पवित्र उपवनों से लेकर जीवित जड़ पुलों तक यहाँ के समुदायों ने स्थायी संरक्षण के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीन मेघालय और ग्रीन मेघालय प्लस जैसी योजनाएं इसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। प्रमुख मुख्य वन संरक्षक ने ये भी बताया कि राज्य सरकार ने वन विभाग की अधोसंरचना सुधार में महत्वपूर्ण निवेश किया है। बेहतर आवास और परिवहन सुविधाओं ने हमारे फील्ड कर्मचारियों की कार्यक्षमता और मनोबल में काफी वृद्धि की है।
Of the commitment of the government to forest and environment, as well as a tribute to the undying spiritual connection of our people with the forest. A visit to the sacred groves will show how the communities have for generations, by their own active participation, preserved their forests. Every visit to the sacred groves is a personal experience of learning for all government functionaries, including me, to see how much the community can achieve on its own where they have such a deep-seated link with the forests. The Little Wood Bridges at Modelong, where a whole new innovation has been brought into effect, shows that the thinking process has continued for generations, refined over generations, to reach a certain denouement which we are proudly witnessing in our time. The government of Meghalaya has taken forward this long-abiding tradition and initiated measures most important to involve the community in protection of the forests. And this is at the core of the Green Meghalaya program, under which payment of ecosystem services are made to the community to protect their forests. This has now been upgraded to Green Meghalaya Plus, which offers better facilities, better results for the community.
Meghalaya सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक स्थानीय समुदायों की भागीदारी से वन कटाव और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना किया जा सके। इसी क्रम में शैक्षणिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत नागालैंड स्थित सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी ने विदेश मंत्रालय के अधीन नीति अनुसंधान संस्था रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज RIS के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ग्लोबल साउथ और त्रिकोणीय सहयोग उभरते आयाम विषय पर दिल्ली में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान हुआ। इस सहयोग के तहत सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी देश भर के 23 उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है जो RIS के साथ मिलकर शोध, संकाय आदान प्रदान, शैक्षणिक संसाधनों का साझा उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संयुक्त सम्मेलन आयोजित करेंगे। ये समझौता संयुक्त प्रकाशन, शोध सामग्रियों के आदान प्रदान और संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में भी एक अहम कदम है, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में ज्ञान और विकास की दिशा में नए आयाम खुलेंगे। ये जानकारी हमारी पूर्वोत्तर संवाददाताओं की रिपोर्ट पर आधारित है।
पांच वर्षों के लंबे इंतजार के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा इस बार शुरू हो रही है और कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था सिक्किम आज शाम पहुंच रहा है और इस जत्थे के लिए सिक्किम सरकार और प्रशासन ने बहुत सी व्यवस्थाएं की हैं। तो आइए जानते हैं हमारे संवाददाता दिलीराम दुलाल की इस रिपोर्ट में कि पहले जत्थे के पहुंचने पर क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं।
कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज गांतोक पहुंच रहे हैं। सिक्किम सरकार ने तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए सभी तैयारियां कर ली है। तीर्थयात्री स्थानीय वातावरण से परिचित होने के लिए विभिन्न स्थानों पर रुकेंगे। मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तामंग 20 जून को नथुला से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था को प्रस्थान कराएंगे। इस संबंध में सिक्किम सरकार के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सीएस राव ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा गांतोक से शुरू होकर नथुला मार्ग उसके बाद कैलाश और मानसरोवर तक पहुंचेगा। यात्रा को सुगम बनाने के लिए गांतोक और नथुला के बीच मौसम अनुकूल केंद्र स्थापित किए गए हैं।
रिगार्डिंग कैलाश मानसरोवर यात्रा, वी आर रिसीविंग अराउंड 35 यात्री अलॉन्ग विथ 2 लाइजन ऑफिसर्स। एर्लियर वी वर प्लानिंग फॉर 48 एंड प्लस 2 लाइजन ऑफिसर्स। फ्यू ऑफ आवर यात्रीज दे डिस्क्वालिफाइड इन मेडिकल टेस्ट, दैट्स व्हाई ओनली 35 टुमारो दे आर रीचिंग हियर। दे विल बी रिसीव्ड बाय आवर State Tourism Development Corporation officials at Bagdogra, so that they will come to Gangtok. As informed earlier, 5 days acclimatization formalities are there before crossing the border. First day they are going to stay in Gangtok, that is at around 6,500 feet altitude. Then after that, second and third day, they are going to stay at 17th mile JN Road, where we have our own accommodation. That accommodation has been developed only for Yatri's purpose. There they are to stay 2 nights, means 2 days they are going to stay. Then last 2 days they will be shifted to Saritang, that is almost in the border of China and India. That is at somewhere around 14,000 feet. So all these places we have our accommodation facilities and medical facilities, everything properly arranged, then there will not be any problem. 2 doctors always will be with the yatris till crossing the border. Then we have arranged some interaction with the army and the paramilitary forces, state administration, some yoga and some other programs, some cultural programs also we have organized. Everything will be taken care of by our State Tourism Development Corporation, that is under Tourism Department. one important thing is on 20th they are going to cross India border from Nathula to China. From there, the Chinese government take care of our yatris. That program is going to be attended by our chief minister. He is going to flag off. He is going to have an interaction with the yatri. That program, it is almost confirmed. The chief minister, he has given his consent to attend that thing. So that will be a very beautiful program. Will be attending by all the major topmost army officials from our state 17 mountain division. Then state officers, they are going to attend. Then all the paramilitary forces heads also, they are going to attend this program. That will be a very beautiful program, and we have taken all the care. No need to worry. We are very good hosts even for all the tourists. That identity we have, that same thing will be continued even for our yatris.
सिक्किम के अनोखे आकर्षण के बारे में राव ने कहा, सिक्किम की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और जलवायु इससे कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आदर्श स्थान बनाती है। 7096 वर्ग किलोमीटर में फैले अपने छोटे आकार के बावजूद सिक्किम में 6 प्रभावशाली वनस्पतियां हैं और इसकी ऊंचाई 300 मीटर से 8586 मीटर तक है, जो कंचनजंगा पर्वत पर सबसे ऊंची है। उल्लेखनीय बात यह है कि गांतोक से नथुला तक मात्र 49 किलोमीटर की दूरी पर यात्री 3 से 4 अलग अलग वनस्पतियों का अनुभव कर सकते हैं। स्मरण हो, विदेश और वस्त्र राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा ने 13 जून को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू भवन में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाने के लिए एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने यात्रियों को उनके चयन पर बधाई दी और उन्हें सुरक्षित और संतुष्टिदायक यात्रा की शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में मंत्री ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों जैसे कि रक्षा मंत्रालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, दिल्ली, उत्तराखंड और सिक्किम की राज्य सरकारों और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की भूमिका को मान्यता दी। उन्होंने यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए चीनी पक्ष के सहयोग की सराहना की। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गांतोक से मैं दिलीराम दुलाल।
दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति और कला की एक रोचक यात्रा लाए हैं। ये रोचक यात्राओं की श्रृंखला में हमने पिछले कुछ दिनों बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा की। आज बारी है पूर्वोत्तर राज्यों के खेलों की। पूर्वोत्तर राज्यों के खेलों का इतिहास बहुत पुराना है। आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में खेला जाने वाला पोलो शताब्दियों से मणिपुर में खेला जाता रहा है और आज भी इसे इस राज्य में खेलने की परंपरा है। इसी तरह से तमाम ऐसे खेल हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न जनजातियों द्वारा आज भी खेले जाते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराया है। बहुत सारे पदक हमारे देश के लिए उन्होंने जीते हैं। आप सभी ने मैरी कॉम का नाम तो सुना ही होगा और ऐसे तमाम खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में ओलंपिक से लेकर राष्ट्रमंडल खेलों और तमाम खेलों में भारत के झंडे को लहराया है। तो आइए एक विस्तृत आपको रिपोर्ट सुनवाते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के खेलों की रोचक यात्रा पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों के परंपरागत खेलों के बारे में, पूर्वोत्तर राज्यों से निकलने वाले खिलाड़ियों की यात्रा के बारे में और साथ में सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में जिसके तहत पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
उत्तर पूर्व भारत, जिसे हम भारत का रत्न भी कह सकते हैं, न केवल अपनी संस्कृति, परंपराओं और भाषाई विविधताओं के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के लोग खेलों के क्षेत्र में भी भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। यहाँ की मिट्टी में ऐसी सादगी और कठोरता है जो खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। यहाँ के पारंपरिक खेल आज भी गांव कस्बों में जीवित हैं और वहीं से निकलते हैं ऐसे खिलाड़ी जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का परचम लहराते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में विविध पारंपरिक खेल देखने को मिलते हैं जो स्थानीय संस्कृति, त्योहारों और जीवन शैली से गहराई से जुड़े हैं। असम में पारंपरिक खेलों का प्रमुख उदाहरण है दोंधी बियो, जो दो टीमों के बीच खेले जाने वाला एक तेज गति वाला खेल है। वहीं कबड्डी और गिल्ली डंडा जैसे खेल ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। मणिपुर का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक खेल है सगोल कांगजेई, जिसे आधुनिक पोलो का प्रारंभिक रूप माना जाता है। यहाँ के लोग सदियों से इस घुड़सवारी खेल को खेलते आए हैं। इसी राज्य से पोलो का अंतर्राष्ट्रीय सफर शुरू हुआ। थांगता और सरित सरक मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट्स हैं, जिनमें शारीरिक क्षमता, लयबद्धता और मानसिक संतुलन की जरूरत होती है। यूबी लकपी मणिपुर का एक पारंपरिक खेल है जो रग्बी जैसा होता है, लेकिन इसमें तेल से लिप्त नारियल का उपयोग गेंद की तरह किया जाता है। ये खेल खासकर त्योहारों पर खेला जाता है और इसके पीछे धार्मिक महत्व भी है। मेघालय में जटरा और वाईकुपर जैसे पारंपरिक खेल देखे जाते हैं जो पारंपरिक समुदायों के बीच आपसी सहयोग और संतुलन को बढ़ावा देते हैं। यहाँ आर्चरी यानी तीरंदाजी बहुत लोकप्रिय है, विशेषकर तेरशिला नामक खेल जिसमें दैनिक जीवन की कुशलता झलकती है। मिजोरम में इंटर विलेज फुटबॉल टूर्नामेंट आज भी पारंपरिक गौरव का विषय रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किट्टल और सुपेक जैसे खेल खेले जाते हैं जिनमें शरीर के लचीलेपन और तीव्रता की परीक्षा होती है। नागालैंड में खो खो और सेसे जैसे पारंपरिक खेल युवाओं को न केवल शारीरिक रूप से दक्ष बनाते हैं बल्कि सामुदायिक भावना भी सिखाते हैं। नागा रेसलिंग यहाँ का एक अत्यंत लोकप्रिय खेल है जो ताकत, संतुलन और तकनीक पर आधारित होता है। अरुणाचल प्रदेश में एपटानी जनजाति का डीलो खेल और मिश्मी जनजाति का कट्टा फाइटिंग आज भी पारंपरिक मेलों में दिखते हैं। यहाँ के बोंग गेम्स और लोकल एथलेटिक्स स्पर्धाएं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में खेले जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी के बावजूद खिलाड़ी पूरी ऊर्जा के साथ खेलते हैं। त्रिपुरा में मुकना और थांगुर जैसे कुश्ती आधारित खेल स्थानीय युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। बम्बा और नटुआ जैसे खेल भी विभिन्न जनजातियों में खेले जाते हैं। सिक्किम में याक रेसिंग और थोड़गे जैसे खेल पारंपरिक त्योहारों का हिस्सा हैं। सिक्किम की ऊंचाई और कठोर मौसम के बीच ये खेल खिलाड़ियों की मानसिक और शारीरिक क्षमता की परीक्षा लेते हैं। ये पारंपरिक खेल न केवल सांस्कृतिक पहचान के वाहक हैं, बल्कि खेल भावना, अनुशासन और परिश्रम के बीज भी बोते हैं। यही कारण है कि आज इन राज्यों से निकलकर कई युवा खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर कर रहे हैं। उत्तर पूर्व भारत के खिलाड़ी अब किसी भी खेल मंच पर केवल भाग लेने नहीं जाते बल्कि पदक जीत कर लौटते हैं। इस क्षेत्र की मेहनती और अनुशासित जीवन शैली ने यहाँ के खिलाड़ियों में एक विशेष मानसिक दृढ़ता पैदा की है जो खेलों में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की मैरी कॉम की। उनका पूरा नाम मंगते चंगनेई जैंग मैरी कॉम है। वे मणिपुर के चुरा चांदपुर जिले से आती हैं। उन्होंने 2002 में तुर्की के अंताल्या में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया का ध्यान खींचा। इसके बाद वे 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018 में भी विश्व चैंपियन बनी। कुल मिलाकर उन्होंने 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है। 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने फ्लाईवेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न जैसे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अब बात करते हैं सेखोम मीराबाई चानू की, जो मणिपुर के नोंगपोंग कांगचिंग गांव से हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर देश का सिर ऊंचा किया। इससे पहले 2017 में उन्होंने अमेरिका के अनाहिम शहर में आयोजित वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भी उन्होंने 201 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता। मीराबाई को भी पद्मश्री और खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लवलीना बोरगोहेन असम के गोलाघाट जिले से आती है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेल्टरवेट मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता और असम की पहली महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक पदक प्राप्त किया। 2023 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर इतिहास रचा। उन्हें अर्जुन पुरस्कार और असम गौरव सम्मान से नवाजा गया। जेरेमी लाल रिनुंगा मिजोरम के आइजोल से हैं। 2018 में अर्जेंटीना में आयोजित यूथ ओलंपिक में उन्होंने 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था और वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय वेटलिफ्टर बने। 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 67 किलोग्राम वर्ग में कुल 300 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। बिंध्या रानी देवी मणिपुर से ही आती हैं। उन्होंने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 55 किलोग्राम भार वर्ग में 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता। नयनमणि सैकिया असम के गोलाघाट से हैं और भारतीय लॉन बॉल्स टीम की सदस्य हैं। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने लॉन बॉल्स में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। दिम्पा देवी मणिपुर से हैं और उन्होंने भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नेतृत्व किया। मणिपुर से ही बेमबेम देवी को भी भारतीय महिला फुटबॉल का अग्रणी चेहरा माना जाता है। वे 2015 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने तक भारत के लिए 85 से अधिक मैच खेल चुकी थी। थोइबा सिंह मणिपुर से आने वाले हॉकी खिलाड़ी हैं। वे भारत के लिए 1996 के अटलांटा ओलंपिक में खेले थे। सरिता देवी भी मणिपुर से हैं। उन्होंने 2006 के दोहा एशियाई खेलों में कांस्य पदक और 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। उत्तर पूर्वी भारत के युवाओं में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना की, जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य स्कूली और कॉलेज स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षण, पोषण, कोचिंग और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में खेलो इंडिया केंद्र खोले गए हैं। अकेले मणिपुर में 2023 तक 30 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र खोले जा चुके हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत कई उत्तर पूर्वी खिलाड़ियों को सीधे आर्थिक सहायता मिल रही है। मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और जेरेमी लाल रिनुंगा जैसे खिलाड़ी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय युवा संसाधन केंद्र के माध्यम से भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शिविर और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। मणिपुर सरकार ने राज्य खेल नीति 2020 को लागू किया है, जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, सरकारी नौकरी और छात्रवृत्ति दी जाती है। मिजोरम सरकार ने स्टेट स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। मिजोरम में फुटबॉल के लिए मिजोरम प्रीमियर लीग शुरू की गई है। असम सरकार ने 2023 में मिशन टैलेंट हंट की शुरुआत की थी। गुवाहाटी में सरू सजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एथलेटिक्स, तैराकी, शूटिंग और फुटबॉल के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। नागालैंड सरकार ने यूथ एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स कार्यक्रम चलाया है। कोहिमा में नागालैंड ओलंपिक्स का आयोजन अब नियमित रूप से हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान लागू किया है। वहीं त्रिपुरा सरकार की खेलो त्रिपुरा पहल और सिक्किम सरकार के या गेम्स फेस्टिवल पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। पूर्वोत्तर भारत में भारतीय खेल प्राधिकरण के कई क्षेत्रीय केंद्र भी कार्यरत है। इम्फाल और गुवाहाटी के केंद्र वेटलिफ्टिंग, मुक्केबाजी और फुटबॉल के लिए प्रमुख माने जाते हैं। जहां एक ओर संसाधन सीमित है, वहीं दूसरी ओर लगन असीमित है। यही कारण है कि भारत की खेल नीति में अब उत्तर पूर्व एक केंद्रीय स्थान ले चुका है। पूर्वोत्तर डायरी डेस्क के लिए सरफिरोजी।
श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का अंक यहीं तक। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अगले सप्ताह पूर्वोत्तर भारत की कुछ और झलकियों के साथ हम आपके बीच होंगे पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के एक नए अंक में। हमें अनुमति दें। नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक मोहित सिंह।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।